नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित और आत्मनिर्भर बनने के लिए उत्सुक है। नई दिल्ली में छठे रामनाथ गोयनका व्याख्यान में श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने देखा है कि 21वीं सदी के पिछले 25 साल कितनी तेजी से बीते हैं और एक के बाद एक कई चुनौतियां सामने आई हैं, फिर भी भारत के विकास को रोका नहीं जा सका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारतीय विकास मॉडल को आशा के एक मॉडल के रूप में देख रही है। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में 1951 के बाद अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है।
रामनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि वे बहुत अधीर थे। अधीरता नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। वो अधीरता जो परिवर्तन के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कराती है। भारत विकसित होने के लिए अधीर है। भारत, हम सब देख रहे हैं 21वीं सदी के 25 साल कितनी तेजी से बीते हैं। एक से बढ़कर एक चुनौतियां आई, लेकिन वो भारत की रफ्तार को रोक नहीं पाई।
बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमान खान को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूबला के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पीठ ने 453 पृष्ठ के फैसले में शेख हसीना को 2024 के जुलाई अगस्त विद्रोह में छात्र प्रदर्शनकारियों पर कठोर कार्रवाई कर उन्हें उकसाने, आपराधिक साजिश रचने और विद्रोह को रोकने में असफल रहने सहित कई मामलों में दोषी करार दिया है। फिलहाल निर्वासन में रह रही 78 साल की श्रीमती शेख हसीना ने फैसले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने करीबी पड़ोसी बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों, देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण द्वारा सुनाए गए फैसले पर ध्यान दिया है। भारत पड़ोसी देश में शांति और लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करता रहेगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज पटना में पार्टी मुख्यालय में होगी। बैठक में नव निर्वाचित 89 विधायक नए विधायक दल का नेता का चुनाव करेंगे। नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए कार विस्फोट मामले में शामिल आतंकवादी के एक और प्रमुख सहयोगी को गिरफ्तार किया है। कश्मीर के जसीर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया है। अभिकरण के अनुसार वानी ने कथित तौर पर इस आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की थी। हमले में 10 लोग मारे गए थे और 25 घायल हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के दूसरे चरण की घोषणा की है। दूसरे चरण के अंतर्गत 7000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ 17 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि इन 17 परियोजनाओं से 60000 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा और 11000 से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की एक टीम आज पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की समीक्षा करेगी और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रथम स्तरीय जांच की कार्यशाला में शामिल होगी। प्रधान सचिव एसबी जोशी और मलय मलिक, उप सचिव अभिनव अग्रवाल, कोलकाता उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में एसआईआर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। जापान के तोक्यो में आयोजित बधिर ओलंपिक निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की अनुया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।